ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे दीदी ने अनाउंस किया कि आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, योग के संबंधित नहीं है लेकिन ज्ञान के संबंधित है। और आज हम कुछ ऐसे अनोखी बातें जानने वाले हैं, और तीन टॉपिक्स हैं। तीन टॉपिक में से जो सबसे पहला जो सत्र है वह है द सीक्रेट्स ऑफ दिलवाड़ा टेम्पल। सबसे पहला सत्र जो हम शुरू करने जा रहे हैं, और आप इसके बारे में अच्छे से जानते भी होंगे, और वो आपके सामने यहां पर है। स्लाइड्स अभी जो है आपको थोड़ी देर के बाद प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले होंगी। यस, थैंक्स। आप में से कौन कौन है जिन्होंने दिलवाड़ा मंदिर को देखा है, हाथ ऊपर करेंगे? ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है। तो आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इससे स्पष्ट होगा कितना आपने देखा है दिलवाड़ा टेम्पल। आमतौर पे हमारे यहां दिलवाड़ा टेम्पल पे बहुत सारी बातें होती हैं, और बाबा मुरली में बहुत इसको याद करते हैं, कहते हैं कि बच्चों का ये परफेक्ट यादगार है। तो दिलवाड़ा मंदिर की जब बात आती है तो मेरे मन में कुछ और बातें याद आती हैं। दिलवाड़ा कहां पे स्थित है? राजस्थान में। शायद ज्ञात होगा राजस्थान का नाम पहले राजस्थान नहीं था, क्या था? राजपुताना। राजपुताना जो राजपुत्र शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है, राजपुत्र मतलब प्रिंस प्रिंसेस। ये देख, सच में ये प्रिंस प्रिंसेस की भूमि है। कुछ यहां पे बैठे हैं सभा में, और उसमें जो है माउंट आबू को, अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू को क्वीन ऑफ अरावली कहा जाता है, और उसमें स्थित है, ये है बहुत ही पवित्र मंदिर जिसका नाम है दिलवाड़ा टेम्पल। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। आमतौर पे होता क्या है, मुझे याद है जब हम शुरू के दिनों में जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर, जब पहली बार आए थे, तो अक्सर करके वो गाइड ट्रैवल वाली बसें होती हैं, और जल्दबाजी में कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट 20 मिनट में आपको दर्शन करके आना है या देखकर आना है। आपने देखा होगा, और लोग जाते हैं मंदिर में, हाँ नक्काशी बहुत अच्छी लगती है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे हाँ बहुत अच्छा मंदिर है, अच्छा टेम्पल है, और थोड़ा बहुत रहस्य भी देख लेते हैं जल्दबाजी में और चले आते हैं। अब उसमें से आश्चर्य क्या होता है, कुछ हमारे पुराने भाई बहन होते हैं, ऐसे भी होते हैं, और वहां मंदिर का पुजारी खड़ा रहता है और कहते हैं देखो ये है हमारा यादगार। किसके सामने? इतना नशा रहता है बाबा, इतना नशा चढ़ा देते हैं, और उसका क्या होता है फिर बाद में? साइड इफेक्ट। क्योंकि बाबा बताते हैं हर समय हमें युक्तियुक्त रहना है, किसी की विचारधारा को ठेस न पहुंचे इसका भी हमें ध्यान देना है। और भी इंटरेस्टिंग बात, जब तक लोग मंदिर देखते रहते हैं इतने में गाइड आता है, और गाइड अक्सर करके क्या कहेगा मालूम है? उसके मैं लाइन सुनाता हूं आपको, गाइड क्या कहता है। एक तो फटाफट इंट्रोडक्शन देगा, और फिर क्या होता है, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आज से 1000 साल पहले देरानी जेठानी के झगड़े होते थे। तो लोगों को लगता है अरे वाह देरानी जेठानी, चलो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, आगे बढ़ते हैं। तो जो रहस्य देखना चाहिए वो रहस्य दिख नहीं पाता है ना। ऐसे तो हमारे यहाँ पे सेल्वम भाई हैं, आप जानते होंगे, काफी अच्छे से दिलवाड़ा रहस्य की बातें बताते हैं। इसमें कुछ और अनोखी बातें हैं जो मुझे लग रहा है कि कवर करना आवश्यक था, तो विषय अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। और दिलवाड़ा टेम्पल के कुछ ऐसे रहस्य जो जानने बड़े आवश्यक हैं, और जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका बीड़ा स्पार्क विंग को उठाना चाहिए, क्योंकि स्पार्क विंग में रिसर्च होता है। और दिलवाड़ा जो टेम्पल है उसके मैनेजर गोवर्धन सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे काफी अच्छी हमारी वार्तालाप होती है। जब मैं वहां मंदिर में जाता हूं तो मुझे मोबाइल सबमिट नहीं करना होता, मैं मोबाइल अंदर लेकर ही जाता हूं, लेकिन वहां पे ऐसे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और ना मैंने कभी अंडू एडवांटेज लिया। मैं चाहूं तो फोटोग्राफ खींच सकता था लेकिन हमने खींचे नहीं है। 1990 के बाद वहां पे फोटोग्राफी थोड़ी बंद कर दी गई कि आप फोटोग्राफी नहीं ले सकते हैं, लेकिन पहले जो फोटोग्राफिक्स हुई हैं, और अमेरिकन लाइब्रेरी से मुझे कुछ फोटोग्राफ मिले हैं दिलवाड़ा के, ऐसे कुछ फोटोग्राफ शायद हमारा कभी ध्यान नहीं गया हो, तो वो फोटोग्राफ भी आपको हम दिखाएंगे कैसे दिलवाड़ा का रहस्य कैसे कैसे है। और तो संक्षिप्त में मैं अभी आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं। अच्छा, किसने दिलवाड़ा टेम्पल को पूरी तरह से देखा है? अच्छे से वो हाथ ऊपर करेंगे, अच्छे से ऊपर ऊपर से नहीं। देखिए बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, आप में से कौन, अच्छा बताइए, दिलवाड़ा कलयुग में बना था कि द्वापर युग में? अच्छा, जो कहते हैं द्वापर युग में बना था, हाथ ऊपर करेंगे। कलयुग वाले कौन कौन है? अच्छा ठीक है, असली में द्वापर और कलयुग के संगम में बनता है, देखा जाए तो वास्तव में कलयुग में आता है, लेकिन जस्ट द्वापर खत्म हुआ था। दिलवाड़ा में कितने टेम्पल्स हैं, कितने मंदिर हैं टोटल? 108, मैंने तो सिर्फ चार ही देखे हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा में स्वर्ग का मॉडल कहां पर है? अक्सर करके जो नए आते हैं ना, उन्हें मूर्तियां दिखाई देती हैं और सोचते हैं बाबा ने कहा है स्वर्ग का मॉडल, आखिर है कहां स्वर्ग का मॉडल? तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं स्वर्ग का अलग से मॉडल बना हुआ होगा, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो हम जानेंगे। चलिए मैं आपको सुनाता हूं पहले दादी, पहले साकार बाबा दिलवाड़ा मंदिर के बारे में क्या कहते थे। मैं डायरेक्ट आपको साकार बाबा के महावाक्य सुनाता हूं, सुनेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। वॉल्यूम भले रखेंगे ताकि लोगों को सुनाई दे। सुनाई दे रहे? माइक रखें। आवाज पहुंच रही है? अच्छा, आवाज नहीं पहुंच रही। इसको यहां पर आप लिखित नीचे पढ़ सकते हैं। ये बाबा के साकार महावाक्य थे, कितना महत्वपूर्ण है दिलवाड़ा टेम्पल। तो आप जानते हैं कि माउंट आबू नाम का भी कुछ अर्थ होता है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आबू शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पुराणों में आबू को कहा गया है अर्बुदा अरण्य। संस्कृत में अरण्य का मतलब क्या होता है? वन, जंगल। और हम आबू को क्या कहते हैं? मधुवन। हो सकता है यहां की ही बातें जो है कहीं ना कहीं शायद गई हो। और जैनियों में आबू को जो है वो कहते हैं अर्बुदगिरी कहते हैं, अर्बुदाचल कहते हैं। संस्कृत शब्द जो है आबू वास्तव में अर्बुद शब्द जो है दो शब्दों से बना है। अर्ब का मतलब होता है पहाड़ माउंटेन और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान नॉलेज, जैसे गौतम बुद्धा बुद्ध लगता है। तो अर्बुद शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है माउंटेन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पहाड़ी। तो आबू को ज्ञान की पहाड़ी कौन बनाता है? देखिए, तो नाम के पीछे भी कितना अर्थ है बहुत कम लोग जानते हैं। यहां कहा जाता है कि माउंट आबू में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है। आप में से किसने किसने देखा है वशिष्ठ ऋषि का आश्रम? बहुत कम लोगों ने देखा होगा। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है और बताया जाता है कि वहां से ही राजपूतों के खानदान या जो वंशज थे उनकी उत्पत्ति हुई। और बताते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश की उत्पत्ति भी उसी यज्ञ कुंड से हुई। तो वास्तव में ये यहां का ही यादगार है, वशिष्ठ कोई और नहीं, स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ही जो है ज्ञान और योग की अग्नि से दो कुल का निर्माण करते हैं, दो वंशों का निर्माण करते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश, जो आप प्रैक्टिकली में देख रहे हैं कि कैसे सूर्य वंश और चंद्र वंश की जो सारी चीजें यहां पे हैं उपस्थित हैं। आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो बताया जाता है कि माउंट आबू में, ऐसे लोग कहते हैं कि टोटल आबू में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और लगभग 50 मंदिर है। तो जो सच में यादगार है बिल्कुल सही है, यहां पे सच में 33 करोड़ देवी देवताओं का ही वास होता है, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं आपको दिलवाड़ा टेम्पल में ले चलते हैं। आप देख रहे हैं दिलवाड़ा टेम्पल स्लाइड्स में। जैसे आप जाते हैं तो पहला प्रश्न ये होता है कि दिलवाड़ा जो शब्द है, अगर हम जो दिलवाड़ा शब्द यूज करते हैं उसका अर्थ क्या होता है, क्या कहेंगे? तो गवर्नमेंट ने 5 रुपए का स्टैंप निकाला हुआ है, उसमें नाम मिलता है दिलवाड़ा। यहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं इस मंदिर को कहते हैं देलवाड़ा, और संस्कृत में इसका मतलब होता है देउल वाड़ा। देउल का मतलब होता है मंदिर और वाड़ा मतलब मंदिरों का स्थान, प्लेसेस ऑफ टेम्पल। ये दिलवाड़ा का मंदिर होता है, लेकिन हमारे प्राण प्यारे बाप दादा इसका अलग डेफिनेशन देते हैं। वो क्या डेफिनेशन देते हैं? दिल वाला, सबके दिल लेने वाला, दिल वाला का ये मंदिर है। तो देखिए अलग अलग ये नाम जो दिलवाड़ा के आप पाते हैं। अभी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है तब हम चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैनियों में कितने तीर्थंकर माने गए हैं? 24 तीर्थंकर माने गए हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा उन 24 तीर्थंकरों में महावीर स्वामी सबसे लास्ट तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। उनके जो पहले जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, और उनके पहले जो 22वें तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ। ऐसे 3 ये महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। इतिहासकार केवल प्रायः महावीर और पार्श्वनाथ को हिस्टोरिकल फिगर मानते हैं। महावीर ने धर्म की स्थापना कब की थी? जैन धर्म की स्थापना कब होती है? द्वापर युग में, जब बुद्ध की स्थापना होती है। जैसे गौतम बुद्धा बुद्ध धर्म की स्थापना करते रहते हैं, पैरेलली महावीर वर्धमान महावीर क्या करते हैं? जैन धर्म की स्थापना करते रहते हैं। दोनों धर्म स्थापक कंटेम्परेरीज थे, समकालीन थे, एक ही काल में हुए हैं। अब महावीर स्वामी के जो पहले पार्श्वनाथ थे बनारस के राजा के पुत्र थे, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे, ये भी हिस्टोरिकल फिगर हैं। नेमिनाथ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैन धर्म में नेमिनाथ को कृष्ण का कजिन बताया जाता है। अब जैन धर्म की प्रवृत्ति रही है, हर धर्म की कुछ न कुछ लिंक होती ही है, तो वो बताते हैं कि नेमिनाथ जो उनके 22वें तीर्थंकर थे, उनके पिताजी समुद्र विजय और कृष्ण के पिता वसुदेव दोनों क्या थे? भाई थे। इसलिए नेमिनाथ और कृष्ण क्या है? कजिन है, ऐसे बताते हैं। वास्तविकता कुछ और है, वो तो हमको मालूम है कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। अब आश्चर्य की एक और बात ये हो जाती है कि सतयुग में कितनी गतियां चलती हैं? त्रेता में 8-12 कितने हो गए? संगम युग का काउंट करते हैं तो कितना होता है? 21। और अगर ये 2-3 हिस्टोरिकल फिगर्स को जोड़ लेते हैं तो संख्या लगभग 24 के आसपास पहुंच जाती है, जिसे जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। आदिनाथ का दूसरा नाम है ऋषभदेव। तो आदिनाथ, ऋषभदेव, ब्रह्मा, एडम, आदम, ये एक ही व्यक्ति के बारे में कहा गया है। तो जैनी भी जो सबसे पहला तीर्थंकर किसको मानते हैं? आदिनाथ। या ऋषभ देव, जिनकी निशानी बैल, जैसे हम लोग बैल दिखाते हैं, नंदी दिखाते हैं, तो उनकी निशानी नंदी है। आगे बढ़ते हैं तो दिलवाड़ा में टोटल कितने टेम्पल्स हैं? ऐसे देखा जाए तो चार बड़े टेम्पल हैं, वरना पांच टेम्पल का समूह है। टेम्पल्स के नाम हमें थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, आसानी होगी। पहला टेम्पल किसका है? आदिनाथ का, जिसको विमल शाह ने बनाया था, इसलिए इसे विमल वसही भी कहते हैं। दूसरा टेम्पल नेमिनाथ का, जिसको वस्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों ने बनाया था। तीसरा टेम्पल ऋषभदेव टेम्पल, जिसको आदिनाथ का टेम्पल भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे कन्फ्यूजन होता है, ऋषभदेव और आदिनाथ अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तीसरे जो है, चौथे हैं पार्श्वनाथ, जो मैंने बताया, और पांचवे जो है छोटा सा एक टेम्पल है महावीर स्वामी का। अब रहस्य पहला जो आपसे स्पष्ट करने जा रहे हैं, वास्तव में दिलवाड़ा में देखा जाए तो केवल चार ही मंदिर मुख्य है, तो दिलवाड़ा के चार मंदिर चार युगों का प्रतीक है। ये सबसे अनोखी बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, इंडिविजुअल, दिलवाड़ा के चार मंदिर चार युगों के प्रतीक हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपके सामने आर्किटेक्चरल मैप है दिलवाड़ा का। ये पहला टेम्पल है आदिनाथ का, इसके बाद दूसरा टेम्पल बनता है नेमिनाथ का, तीसरा फिर से आदिनाथ का जिसे ऋषभदेव कहते हैं, और चौथा पार्श्वनाथ का। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेम्पल ऐसे बन रहे हैं जैसे एक युग बीता, दूसरा युग आया, और लगभग दो मंदिरों के बीच में 200 इयर्स का गैप है। जैसे पहला मंदिर बनता है 200 वर्ष के बाद दूसरा मंदिर, और लगभग 200 वर्ष के बाद तीसरा मंदिर, तो ऐसे लग रहा है कि एक एक मंदिर सीक्वेंस में आगे आगे बढ़ रहा है, जैसे कि सृष्टि चक्र अपने आप में चल रहा हो। तो बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और देखा जाए तो मुख्य दो ही मंदिर बहुत मुख्य है जिसमें नक्काशी बहुत अच्छी की गई है, वह है आदिनाथ और दूसरा नेमिनाथ। तो इसको सतयुग और त्रेता युग कहने में कोई गुंजाइश नहीं है, कह सकते हैं। और तीसरे मंदिर को पीतलहार मंदिर भी कहते हैं, पीतल, और यहां पे कोई नक्काशी वगैरह कुछ खास नहीं है। और चौथा मंदिर जो है वो मार्बल से नहीं बनाया गया, सैंड स्टोन से बनाया गया, बलुआ पत्थर से बनाया गया, मतलब किसकी निशानी? कलयुग की निशानी। और वो तीन मंजिला है, भवका बहुत है लेकिन अंदर कुछ नहीं है। और छोटा सा एक मंदिर जो कलयुग को और सतयुग को जोड़ता है, छोटा सा एक मंदिर महावीर स्वामी का है, जो वास्तव में देखा जाए महावीर अर्थात यह संगम युग की याद दिलाता है। तो दिलवाड़ा के चार टेम्पल्स चार युगों का प्रतीक है, और पांचवा महावीर स्वामी का जो टेम्पल है वह संगम युग का प्रतीक है। बिल्कुल देखिए उसी चक्र या गोले के आधार से बिल्कुल ये मैच हो रहा है, इनके डायरेक्शंस, इनका आर्किटेक्चर भी लगभग ऐसा ही है। तो ये एक अनोखी बात है जो बहुत कम लोग इससे परिचित हैं। अच्छा, इस दिलवाड़ा के मंदिर को किसने बनाया था? दिलवाड़ा मंदिर आज से 1000 साल पहले बनाया गया था, और तभी गुजरात की राजधानी हुआ करती थी पाटन, और पाटन का राजा था राजा भीमदेव प्रथम, और इसके जो कुल देवता थे कौन थे? सौराष्ट्र के सोमनाथ। तो सोमनाथ मंदिर का दिलवाड़ा मंदिर के साथ कनेक्शन ये है कि जब महमूद गजनवी, देखिए ये मंदिर जो आप देख रहे थे प्रेजेंटेशन में, ये कोई सोमनाथ का मंदिर नहीं है, यह सूर्य मंदिर है, मोधरा का, मोधेरा गुजरात में है, उसका यह सूर्य मंदिर है, ये भीमदेव ने बनाया था। ये मंदिर इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि सोचिए भारत में कितनी अपार धन संपदा थी, और आपको लगता है शायद राजाएं मंदिर बनाते थे, आवश्यक नहीं है, रानियां भी कम नहीं थी, बहनों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो भीमदेव की जो रानी थी उदयमती, उसने रानी की वाव या जिसे स्टेप वेल कहा जाता है, यह राजा के यादगार में बनाया था। तो बहनें भी हैं, बहनों ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हिस्ट्री में। देखिए ये वेल कैसे दिखता है, ये राजा भीमदेव का मंत्री, राजा नहीं है, राजा भीमदेव। सोचिए भारत में कितनी अपार धन संपदा थी कि राजा और रानी इतने बड़े बड़े भव्य चीजें जो है बनाया करते थे। तो राजा का एक मंत्री था, राजा भीमदेव का मंत्री था, जिसका नाम था विमल शाह, और विमल शाह ने पहला जो है दिलवाड़ा का टेम्पल बनाया। बताते हैं कि विमल शाह जो है, यहां पे माउंट आबू में एक नगरी हुआ करती थी, बहुत कम लोग जानते हैं, माउंट आबू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पहले एक प्राचीन शहर बसा करता था जिसका नाम था चंद्रावती। अभी पूरी खंडर में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पे इसको मंदिरों का शहर कहते हैं, इतने सारे मंदिर यहाँ पे मिलते हैं। और ये बहुत बड़ा धनाढ्य शहर था, बहुत आबाद था, यहाँ के लोग धन संपन्न थे, जैन व्यापारी भी थे, हर प्रकार का व्यापार हुआ करता था। और दिलवाड़ा का संबंध मोहम्मद गजनवी के साथ भी है, क्योंकि जब महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर लूटने आया था तो चंद्रावती नगरी को लूटते हुए तब वो सोमनाथ की तरफ आगे बढ़ा था। तो चंद्रावती की मूर्तियां आपको माउंट आबू में आपने देखा होगा, म्यूजियम है ऊपर, पांडव वन अगर आप जाते हैं तो वहां म्यूजियम में अभी भी चंद्रावती की कुछ मूर्तियां मिलती हैं, और इतनी सारी मूर्तियां अभी भी दबी पड़ी हैं, ये तब का इतिहास है। तो विमल शाह वहां का मंत्री था, और बताते हैं कि उसने बहुत सारी लड़ाइयां की थी, तो उसको था कि मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। तो विमल शाह की एक वाइफ थी, विमल शाह की जो वाइफ थी वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विमल शाह की वाइफ ने, बताते हैं कि वो जैन धर्म को ज्यादा मान्यता देती थी, तो उसने उस समय जो जैन गुरु वर्धमान सूरी जो महाराज आए थे उसकी तरफ इशारा किया और अपने पति को उनसे परिचित कराया। फिर धर्म के प्रभाव के कारण तब जाके विमल, उन्होंने सोल्यूशन दिया कि आप एक काम कर सकते हैं, आपने जो पाप किया है उसका अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो पवित्र स्थान दिलवाड़ा में क्या कीजिए, एक मंदिर का निर्माण कीजिए। तो उस मंदिर के निर्माण में देखा जाए तो किसका हाथ था, देखिए बहनों का ही, अभी इसमें भी बहनों का ही रोल है, और लोग क्या समझते हैं कि मंत्री ने बनाया है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रोल रहता ही है। तो ये आपने विमल शाह का जो है मूर्ति देखी होगी स्टार्टिंग में, जब भी आप दिलवाड़ा टेम्पल में एंट्री करते हैं। अब बताते हैं कि जब विमल शाह मंदिर बनाने जाता है तो वहां पे पहले बताते हैं दिलवाड़ा में विष्णु और शिव के मंदिर हुआ करते थे, और ब्राह्मण वर्ग धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो ब्राह्मण कहते हैं कि हम आपको मंदिर के लिए जगह नहीं दे सकते। तो बताते हैं कि विमल शाह को स्वप्न में अंबिका देवी दिखाई देती है। देखिये यहां पर भी बहनों का, देवियों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, स्वप्न किसी देव का नहीं आता, किसका आता है, देवी का आता है। और वो अंबिका देवी उसको मार्गदर्शन देती है कि चंपा का एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक स्वास्तिक होगा, उस स्वास्तिक के नीचे खुदाई करो। बताते हैं 2-3 दिन वो फास्टिंग करता है, क्योंकि विमल शाह देवियों का ही उपासक था, आपका ही उपासक था। तो 2-3 दिन फास्टिंग करने के बाद, उपवास करने के बाद, तब देवी स्वप्न में आती है, उसको दर्शन, उसको साक्षात्कार जैसा होता है, स्वप्न आता है और इंस्पायर्ड होता है, और उस जगह पर वह खुदाई करता है। और जैसे ही खुदाई करता है तो पेड़ के नीचे उसको काले रंग की प्रतिमा मिलती है, आदिनाथ की काले रंग की प्रतिमा मिलती है। जगदीश भाई ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा है दिलवाड़ा के ऊपर, बहुत कम लोग जानते होंगे। अब ये किसका प्रतीक है, देखा जाए तो एक कल्प वृक्ष है, स्वास्तिक है, और नीचे कौन तपस्या कर रहा है। तो जैसे हमारे ये कल्प वृक्ष का ही जैसे कि यादगार हो। अब बताते हैं कि विमल शाह क्या करता है, उस मूर्ति को तोड़, मतलब भले नया मंदिर बनाता है लेकिन उस पुराने मंदिर को भी, पुराने मूर्ति को भी मंदिर में स्थान देता है। ये दिखाया गया है कि कैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है। और आपको मालूम रहे कि माउंट आबू में कहीं पे भी आपको मार्बल के पत्थर नहीं मिलेंगे। तो अंबाजी जहां आरासुरी पहाड़ियां हैं, 45 या 46 किलोमीटर दूर से हाथियों के पीठ पर मार्बल को लाद कर माउंट आबू की पहाड़ियों पर चढ़ाया जाता है, और तब ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया था, 1025 में, और 1031-32 में, 31 के आसपास, मतलब 5-6 साल के बाद उस मंदिर का उद्घाटन हो जाता है। तो इसका ये जो दिलवाड़ा के मंदिर है, ये सोमनाथ के मंदिर लूटे जाने के आसपास में ही बने हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये देखिए अब ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा तो खुदाई किया तो मूर्ति निकली है, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। तो विमल शाह क्या करता है, सोने के सिक्के पूरे जो है जमीन पे बिछवा देता है, जितनी जमीन बिछाई जाती है सोने के सिक्के से वो जमीन उसकी हो जाती है। ऐसे लोग की वदंती है, लोग ऐसी बातें कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मंदिर का आर्किटेक्चर बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। देखिए जब जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको हाथियां दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा, इसको हम कहते हैं हस्तीशाला। अब आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो आपको एक गुंबद दिखाई देता है, आपने देखा होगा ये गुंबद, देखिए तो इस गुंबद को क्या कहा जाता है, रंग मंडप, क्या कहते हैं, रंग मंडप। और गुंबद के आगे का जो एरिया है इसको नौ चौकी कहते हैं। गुंबद जो दिख रहा है उसके आगे का हिस्सा जहां मूर्ति है नौ चौकी कहते हैं, और जहां मूर्ति रखी जाती है उसको कहते हैं गर्भगृह। और छोटा सा एक गुड़ मंडप, एक छोटा सा क्लोज्ड हॉल है, तो इस प्रकार इसकी आकृति है। तो जैसे ही हम मंदिर में एंटर होते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसको हम कक्ष कहेंगे या सेल कहेंगे, सेल नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके आप पूरी परिक्रमा करेंगे। इसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। परिक्रमा करने के बाद आप जैसे ही यहां तक आते हैं, लास्ट जो सेल है 57 है। तो टोटल कितने सेल्स हैं, कितने कक्ष हैं, छोटे छोटे मंदिर कितने हैं, 57। इसके 57 और नेमिनाथ के मंदिर के 52 टोटल करेंगे तो 109 आता है। मतलब रफली सब मिला के कितना हो जाता है, 108। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारे 108 मंदिरों का यादगार दिलवाड़ा में अभी भी है। तो ये देखिए यहां से प्रदक्षिणा की जाती है। अब सेल नंबर 23 में पुरानी मूर्ति रखी गई। आप में से किसने पुरानी मूर्ति देखी है? आप अगर देखेंगे सेल नंबर 23 में अभी भी जो जमीन से निकली हुई मूर्ति सेल नंबर 23 में रखी गई है, और यहां पे मेन मूर्ति जो है वह व्हाइट कलर की है और पुरानी मूर्ति ब्लैक कलर की है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, शाम सुंदर। और ब्लैक मूर्ति के बाद जो नेक्स्ट जो मंदिर आता है वो अंबिका का आता है, आदि देव। समझ सकते हैं, आदि देव का भी है और आदि जगत माता का भी है, दोनों का यादगार दिलवाड़ा में मौजूद है। प्रश्न है कि एक मंदिर में दो मूर्तियां क्यों? एक मंदिर में देखिए दो मूर्तियां हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। चलिए मैं आपको वो मंदिर की मूर्ति देखना चाहेंगे, आई हैव द फोटोग्राफ ऑफ दैट। चलिए उसको हम अंदर से देखते हैं कि वो मूर्ति कैसे दिखती है। देखिए अंदर के फोटोग्राफ्स हैं, स्लाइड्स में पहले दिखाएंगे मंदिर के अंदर के फोटोग्राफ। अब आप अंदर एंटर करते हैं, दिख रही है प्रतिमा, यह है वो पुरानी मूर्ति जो आज भी सेल नंबर 23 में मौजूद है। और ये अंबिका की मूर्ति, ऐसे यूजुअली आप जाएंगे तो लाल रंग की ऐसे चुनरी ओढ़ाई रहती है, अंबिका है, उसके गोद में क्षेत्रपाल है, जगत माता है, इसके लिए बालक उसकी गोदी में दिखाया गया है, और उसके हाथ में अंब मतलब आम भी होता है, मैंगोज भी होता है। तो अंबिका देवी के हाथ में आम्र फल जो है ऐसे दिखाया जाता है। तो अंबिका देवी और आदिनाथ, क्योंकि अभी इनकी मूर्ति सावली क्यों है, क्योंकि अभी भी ब्रह्मा की आत्मा पवित्र नहीं थी ना, तपस्या कर रही थी, तो इसलिए इसको ब्लैक दिखाया जाता है। और जब पवित्र बन जाती है तो फिर क्या हो जाती है, व्हाइट। तो देखिए अंदर की मूर्ति व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं, थोड़ा और भी नजदीक जाते हैं, यह है वो व्हाइट मूर्ति जो विमल शाह ने बनवाई थी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे आश्चर्य की बात ये लगी, बताते हैं कि 1500 कारीगर और मजदूर, 1200 टोटल ऐसे इतने सारे लोग थे जिन्होंने 14 वर्ष में इस मंदिर को निर्माण किया। और हमारे यज्ञ की शुरू के दिनों में भट्टी कितने वर्ष की चली थी, 14 वर्ष की। और एक और आश्चर्य की बात है, बताते हैं अगर मजदूरों की संख्या वगैरह अगर टोटल काउंट करें तो लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाती है। मैं यज्ञ की हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहा था, कराची में शुरू में संख्या जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो 500 थी, लेकिन 2-3 साल के अंदर संख्या 1000 तक पहुंच गई थी। तो लगभग ऐसे दिखता है कि मजदूरों की संख्या और वो सारी संख्याएं मैच करती हैं। यहां तक कि बताते हैं कि मंदिर में 210 पिलर्स हैं और 320 कुछ बीम्स बताते हैं। और यज्ञ में शुरू में 400 लोग आए थे, लेकिन बेगरी पार्ट के बाद बहुत से लोग चले गए, तो मुश्किल से 200-300 लोग ही मधुबन में रह गए थे। वो सारी की सारी संख्याएं मैच करती हैं। ये भी कितने हैं, अपने आप में एक अद्भुत चीज है, आप देख रहे हैं। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हुए, अच्छा अब ये किसकी मूर्ति है, गुंबद में टोटल 16 देवियां दिखाई जाती है जिसको विद्या देवी कहा जाता है। तो ये 16 विद्या देवी वास्तव में 16 कलाएं, 16 कलाओं का प्रतीक है। तो ये 16 मूर्तियां हैं आप देख रहे हैं, और मूर्तियों के नीचे देखिए विद्याधर है, विद्या को धारण करने वाला, लेकिन विद्या देवी की मूर्तियां जो है ऊपर दिखाई गई है। तो यहां पे भी देखिए अभी जो है प्रभुत्व किसका है, बहनों का ही है ना। अच्छा ये तो आप जानते ही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं कि जितने भी 57 जो छोटे छोटे कक्ष हैं सब एक दूसरे के ऑपोजिट में बनाए गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे यहां भट्टी का प्रोग्राम चल रहा है, सब आमने सामने बैठकर एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। देखिए कितना भव्य, यहां तक कि मंदिर का जो कोना होता है कॉर्नर, यहां ये वाला हिस्सा, वो भी मूर्तियां बिल्कुल आमने सामने दृष्टि दे रही हैं। इनकी आंखें खुली हुई प्रकृति में जैसे कि चमकता हुआ सितारा, हृदय में भी जो है पुष्प दिखाया जाता है, ये हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। आंखें खुली हुई और पोस्चर एकदम स्ट्रेट, तो सारी बातें इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा परफेक्ट यादगार दिलवाड़ा है जो बाबा बताते हैं। खैर, दूसरा मंदिर जो बनाया गया वो 200 वर्ष के बाद बनाया गया, जिसको कहते हैं वस्तुपाल और तेजपाल का मंदिर। इसकी भी कहानी है, बताते हैं कि वस्तुपाल तेजपाल ये भी मंत्री थे, पोरवाड़ बनिया थे, यहां के ही थे, और बताते हैं कि दोनों तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है, तो सोचते हैं कि धन को हम कहीं गाड़ देते हैं, और जब वो धन को गाड़ते हैं और तो गाड़ने के टाइम ही मालूम पड़ता है कि वहां उल्टा क्या होता है, और बहुत सारा धन मिल जाता है। तो वस्तुपाल और तेजपाल जो थे, उसमें जो तेजपाल था उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था अनुपमा देवी, तो वो क्या कहती है, क्यों ना इस धन से हम क्या करें। वो जैन थे तो सोचते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम पालीताणा है ना, या जो शत्रुंजय पर्वत है, क्यों ना हम उन तीर्थ स्थानों पर मंदिर बनाएं। पर इतने में उनको आबू की महिमा सुनाई देती है, तो सोचते हैं कि अब काम करते हैं, इससे हम क्यों ना माउंट आबू में ही मंदिर बनाएं। तो यहां पे भी वस्तुपाल और तेजपाल को गाइड करने का काम किसने किया था, बहनों ने ही किया था। देखिए, तो क्रेडिट भाइयों को चला जाता है लेकिन बेसिकली डायरेक्शन किसका रहता है। मंदिर का नाम भी देखिए होना चाहिए वस्तुपाल तेजपाल, नहीं अलग होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, बहुत से कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर में कल्प वृक्ष का चित्र भी है। देखिए जैनियों का कल्प वृक्ष ऐसा होता है, छोटा और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो जैनियों में कल्प वृक्ष ऐसे दिखाया जाता है। तो वास्तव में ये कल्प वृक्ष का यादगार है जो नौ चौकी के कोने पे पाया जाता है, उसे आप देख सकते हैं। कई कई गुंबद पे आठ मूर्तियां भी हैं, तो आठ मूर्तियां मतलब क्या हो गए, अष्टरतन बताने की आवश्यकता ही नहीं मुझे। अच्छा, आप में से किसने दिलवाड़ा में त्रिमूर्ति की मूर्तियां देखी हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हाथ ऊपर करेंगे जिन्होंने देखी होगी, किन्होंने देखी नहीं होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं उसका बहुत अच्छे से सर्वे हम कर रहे थे तब मालूम पड़ा कि वास्तव में दिलवाड़ा में तीन ऐसे दो जगह, नेमिनाथ के मंदिर में और आदिनाथ के मंदिर में ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियां भी हैं। आपको मूर्तियों के नजारे दिखाते हैं और फोटोग्राफ मिलने बड़े दुर्लभ होते हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये रंग मंडप है, चित्र दिखाएंगे स्लाइड पे, यहां पहले एक स्लाइड दिखाएंगे, ये देख रहे हैं आप रंग मंडप है, ये वाला हिस्सा ठीक है। अब आपको समझिए कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये 16 मूर्तियां रखी गई हैं, कभी भी आपने इसके कॉर्नर में नहीं देखा होगा। कॉर्नर में एक जगह ब्रह्मा की मूर्ति है, ऐसे मेरा मानना है, दूसरी जगह महेश और तीसरी विष्णु, और चौथे जगह पे अंबिका है। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे दिखेगा, चलिए मैं आपको उसके दर्शन कराता हूं। ये देख रहा है गुंबद, और आपको एकदम कॉर्नर में देखना है ट्राइंगल जहां पे है, थोड़ा इसको मैं और बड़ा करता हूं। अब बताइए यहां पे दिख रहा है क्या है, दाढ़ी दिखाई गई है, और ये हाथ में क्या दिखाया गया है, ब्रह्मा के जो हाथ में दिखाया जाता है। तो जैनियों में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो बिल्कुल हिंदू धर्म के सनातन धर्म के जैसे नहीं बनाई जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन रहता है। और जैन धर्म बहुत ही महान धर्म है, जिसने सबसे ज्यादा अहिंसा को जो है समर्थन किया है, और किसी धर्म में अहिंसा की बात इतनी नहीं आती है जितनी जैन धर्म में आती है। लेकिन वो जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उनको शासन देव या शासन देवी बना देते हैं, मतलब तीर्थंकरों के बॉडीगार्ड, तो इसे वो ब्रह्म शांति कहते हैं। तो वास्तव में ब्रह्म शांति नहीं लेकिन किसका यादगार है, प्रजापिता ब्रह्मा। और देखिए नीचे यहां कल्प वृक्ष भी दिखाया गया है यहां पे। अच्छा अब ये आपको पहचानना पड़ेगा, थोड़ा और भी मैं स्पष्ट दिखा रहा हूं, दिख रहा है मूर्ति, पहले आपको इतनी स्पष्ट नहीं दिख रही होगी, थोड़ा और भी क्लोज व्यू आप देख रहे हैं। अच्छा ये देखिए थोड़ा और भी स्पष्ट हो जाए, ये ब्रह्मा की दूसरी मूर्ति है जो दूसरे मंदिर में है। सेम यहां पे भी क्या है, दाढ़ी दिखाया गया है, यहां पे तो फूल ऐसे दिख रहे हैं जैसे शाइनिंग स्टार हो, छोटे छोटे फूल भी दिखाया गया। और आगे बढ़ते हैं, ये वास्तव में महादेव की मूर्ति है, क्योंकि एक हाथ में दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, जैसे कि सर्प को अपने हाथ में पकड़ा हो। इसके नीचे भी कल्प वृक्ष ठीक कॉर्नर में। थोड़ा और भी स्पष्ट, विष्णु जैसे कि हाथ में क्या है, हाथ में क्या दिखाया गया, चक्र दिखाया गया हो। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और महेश, बहुत कम लोग इससे परिचित हैं, ये तीनों मूर्तियां मिलती हैं। चौथी मूर्ति अंबिका देवी की मिलती है कॉर्नर में, गुंबद के कॉर्नर में। आइए थोड़ा और स्पष्ट देखते हैं, ये है अंबिका देवी की मूर्ति, गोद में बालक है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि वहां महारथी घोड़ेसवार सबका यादगार है। एलिफेंट्स भी यहां पे दिखाई गई हैं द्वार में, जो बहुत कम लोग देख पाते हैं ऊपर की तरफ। कौन कौन है ये, घोड़ेसवार और महारथी आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अनोखी बात, ये रंग मंडप है। मैंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश है, एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ सरस्वती की भी मूर्तियां हैं, जो अक्सर करके लोग नोट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ है, लोग नीचे की तरफ ही देखने लगते हैं। तो चलिए वो दिखाते हैं मूर्तियां। ये रही वो मूर्तियां, लक्ष्मी और सरस्वती। ये सामने आपको लक्ष्मी दिख रही है, थोड़ा और भी नजदीक ले जाता हूं। लक्ष्मी के हाथ में जो है यहां पे एलिफेंट यहां दिखाया गया, छोटे छोटे एलिफेंट दिखाया गया जैसे कि चक्र धारण किया हो। आप देख पा रहे हैं, और ये है सरस्वती। कैसे मालूम पड़ा, थोड़ा और भी मैं आपको करीब ले जाता हूं। सरस्वती के हाथ में क्या है, शास्त्र है, विद्या की देवी। तो लक्ष्मी और सरस्वती की प्राचीन मूर्तियां हैं, जो बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। अच्छा, हमको लगता है कि केवल चक्र जो है विष्णु को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जैनियों में देवी है जिनका नाम है चक्रेश्वरी देवी, तो जरूर बहनों ने सुदर्शन चक्र को बहुत ज्यादा चलाया होगा, मंथन, ज्ञान का मंथन। तो ऐसी भी देवियां हैं जिनके हाथ में एक एक नहीं, दो दो चक्र दिखाए गए हैं। ये देखिए सामने, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए चारों देवियों के हाथ में चक्र है। अभी इस देवी के हाथ में एक नहीं, कितने चक्र हैं, दो दो। इन्हें चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है। चक्र यहां पे भी हाथ में चक्र। अच्छा, यहां पे 32 मूर्तियां डांस कर रही हैं, छोटी छोटी मूर्तियां हैं। वो समझते हैं कि ये गुजरात का गरबा रास है, गाइड ऐसे बताते हैं, बट वास्तव में ये 32 मूर्तियां जो आपस में नृत्य कर रही हैं, ये संस्कार मिलन की रास है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये है अगेन सरस्वती की मूर्ति। अभी मैं आपको विमल शाह के मंदिर की मूर्तियां दिखा रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसे हम जैन मंदिर कहेंगे या कौन सा मंदिर कहेंगे। ये छत में सब देवियों की मूर्ति है, शीतला देवी, पद्मावती देवी है ना, अंबिका देवी, गज लक्ष्मी, चार एक नहीं, चार चार लक्ष्मी, और बीच में कमल खिल रहा है इस मूर्ति में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए हंस के ऊपर भी देवियों को दिखाया गया है। तो अब मुझे बताइए, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं दिलवाड़ा को जैन संप्रदाय का मंदिर मानूं, इतनी सारी देवियां, पूरा मंदिर देवियों से भरपूर है, इतनी नक्काशी में हर जगह देवियां देवियां देवियां। तभी हम उस अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार का जो है चीजें वहां पे दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से किसने किसने जैन मंदिर में कृष्ण की मूर्तियां देखी हैं। दिलवाड़ा में कृष्ण की मूर्तियां भी हैं, तो मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूं कौन कौन से कृष्ण की मूर्तियां हैं। देखिए सेल नंबर 10, यहां पे नेमिनाथ और कृष्ण को टैंक में स्नान करते हुए दिखाया गया है, क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। जैन में एक बताते हैं, जैन धर्म में एक ही वेदंती आती है कि कृष्ण परीक्षा लेते हैं नेमिनाथ का। चित्र इतना स्पष्ट नहीं होगा। अच्छा, सेल नंबर 31, यहां पे कृष्ण दिखाया गया है और नीचे कालिया सर्प दिखाया गया है। कृष्ण क्या कर रहे हैं, कालिया सर्प का मर्दन कर रहे हैं। थोड़ा और भी मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूं। देखिए यहां पे ऊपर में कृष्ण है, नीचे कालिया सर्प है, और विष्णु की मुद्रा में कृष्ण सोए भी हैं, वो भी दिखाया गया है, और ग्वाल बालों के साथ खेल पाल कर रहे हैं, वो भी दिखाया गया है। अच्छा, सेल नंबर 42 में, ये चित्र उसका नहीं है, सेल नंबर 41 में अगर आप जाएंगे, कृष्ण को होली खेलते भी दिखाया गया। ये देखिए यहां पे कृष्ण है, कृष्ण के हाथ में क्या है, सींग है। पहले पिचकारी नहीं होती थी, लोग सींग के अंदर रंग भरा करते थे, कलर है, और ये क्या कर रहे हैं, कृष्ण होली खेल रहे हैं। तो है दिलवाड़ा टेम्पल, लेकिन देखिए कृष्ण की इतनी सारी मूर्तियां वहां पे मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये किसकी प्रतिमा है, नरसिंह अवतार, यहां चारों लोटस दिखाया गया है, इनके इतने सारे हाथ, और जब बताते हैं कि ये जो है क्या कर रहे हैं नरसिंह अवतार के, आपको कहानी मालूम है। आगे बढ़ते हैं, वस्तुपाल तेजपाल का मंदिर आप देख रहे हैं, थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस मंदिर में आप जाते हैं तो अक्सर करके गाइड आपको बताता होगा, क्या बताता है, देरानी और जेठानी के गोखले। अब वास्तविकता है कि नहीं कोई मालूम नहीं, यह अलग बात है, कहीं इतिहास में इसका जिक्र आता नहीं है, लेकिन आपको एक जरूर आश्चर्य होगा कि ये दोनों में थोड़े से डिफरेंस है। ये जो दोनों गोखले बने हैं दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसमें एक हाथी की संख्या में 25 है और दूसरे में हाथी की संख्या 24 है, वरना दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। एक में जो है बताते हैं कि सिर जो है सीधा है और ऊपर की मूर्ति में सिर झुका हुआ है, तो बताते हैं देखो हाँ देवरानी क्या कर रही है, जेठानी को रिस्पेक्ट दे रही है। तो पहले के जमाने में भी वैल्यू सिस्टम हुआ करता था। खैर, वो अपनी बातें बताते हैं। ये मूर्ति अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट होगा। अच्छा, वहां पे भी देखिए, यहां पे अगर ध्यान से देखें तो ये जो है सिर झुका हुआ है और इसके ऊपर सिर जो है स्ट्रेट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है जो आपके सामने दिख रहा है, ये कोई रूम नहीं है, इस सच में कक्ष ही है। इसमें आपको ऐसे 10 हाथी दिखाई देंगे। बाबा कहते हैं ना महारथियों का यादगार, इसका भी अपने आप में एक रहस्य है। तो दोनों मंदिर में, वस्तुपाल और तेजपाल के मंदिर में आप पाएंगे कि ऐसे एलिफेंट्स दिखाए जाते हैं, गजलक्ष्मी। अब मैं आपको स्लाइड्स बताते जाऊंगा, आप देखते रहेंगे क्योंकि स्लाइड्स ही हैं मैक्सिमम। दूसरे मंदिर में कृष्ण लीला भी दिखाई गई है। अब आप सोचेंगे कृष्ण लीला कहां पे आ गई, यहां पे देख सकते हैं। यहां पे क्या दिखाया गया, एलिफेंट, यहां पे कृष्ण का जन्म दिख रहा है, यहां पे झूले में कृष्ण है, यहां पे कृष्ण खेल रहा है, यहां पे कृष्ण के लिए मक्खन बनाया जा रहा है, और यहां पे ग्वाल बाल और गैया दिखाई गई है। यहां पे कंस दिखाया गया जो सिंहासन पे बैठा है, और कंस का ये राज प्रसाद दिखाया गया है, और एक स्वर्ग वहां का गेट दिखाया गया है। यहां पे दिखाया गया है कृष्ण का जन्म कैसे हो रहा है, मां जो है कृष्ण को जन्म दे रही है, और पूरा एक गुफा पूरा बताते हैं, किले को सुरक्षित किया गया है। तो इन बातों से क्या मालूम पड़ता है, जिस समय दिलवाड़ा मंदिर बना था उस समय कृष्ण लीला बहुत फेमस हो गई थी, इसलिए लोगों ने क्या किया, उसको मंदिरों के रूप में जो है दर्शाया। आगे बढ़ते हैं, ये ऋषभ देव का मंदिर है, तीसरा मंदिर। देखिए इस मंदिर में कोई डिजाइन नहीं है, इसलिए इसको द्वापर युग कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। गाइड्स कहते हैं कि इसे राणा प्रताप के मंत्री ने बनाया था, भामाशाह, ऐसा नहीं है, इसे भीमाशाह सुल्तान बेगड़ा का जो मंत्री था उसने बनाया था। हमारी अक्सर करके गोर्धन सिंह जो है वहां के मैनेजर है, उनसे बात होती है, वे कहते हैं कि ना मैं कितनी बार गाइड लोगों को कह चुका हूं कि तुम ज्यादा कपड़े मत मारो, जितना है उतना ही बताओ, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं है। तो ये आपने मूर्ति देखी होगी, किसकी मूर्ति है ये सोने की मूर्ति नहीं, लेकिन गाइड जोर से चिल्ला के बोलेगा कि ये देखिए सोने की असली प्रतिमा 108 मण की, ऐसे नहीं है, ये पंच धातु की प्रतिमा है, ये दिखाया गया है। और एक और आश्चर्य की बात होगी, हमारे सेल्फम भाई बताते हैं, दिख रहा है अगर मूर्ति को दिखने से ऐसे लगता है जैसे उसके हाथ में क्या है, शिवलिंग है, और पीतल मतलब पीतल कहेंगे, कॉपर एज, द्वापर युग की शुरुआत कह सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, अभी चौथा मंदिर है जिसको क्या कहते हैं, ये चौथा मंदिर, जैसे आप एंट्री करते हैं पार्श्वनाथ का मंदिर, वो गाइड बताते हैं कि ये बचे हुए पत्थरों से बनाया गया, ये बात बिल्कुल गलत है, बचे हुए पत्थरों से नहीं बनाया गया, क्योंकि ये मंदिर मार्बल का नहीं है, सैंडस्टोन का है, बलुआ मिट्टी का बना है, यही सबसे बड़ी फ्लोर की मंदिर है। इसमें नृत्य करते हुए मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियां अश्लील भी हैं, जैसे खुजराहों के मंदिर की के साथ तुलना की जा सकती है, ब्रह्मा सरस्वती की भी कुछ इसमें मूर्तियां जो है दिखाई गई है। तो वास्तव में किसका प्रतीक है, कलयुग का प्रतीक है, पुरानी दुनिया का प्रतीक है। और लास्ट मंदिर जो है वह है महावीर स्वामी का, और इस मंदिर मेन मूर्ति यहां पे आती है, और चारों तरफ और चार मूर्तियां आती है नौ रत्नों की। तो जैसे मान लीजिए कि ये अष्टरत्न या जो नवरत्न की बात करते हैं, जैसे कि छोटा मंदिर उसका ही यादगार है। तो इस प्रकार आप शॉर्ट में आपने दिलवाड़ा के जो है कुछ रहस्य को समझा। लास्ट में आपको मैं दादी जानकी के 2 मिनट की ऑडियो प्ले करता हूं कि दादी क्या कहती थी शुरू के दिनों में जब दादी दिलवाड़ा मंदिर देखने के लिए जाया करती थी, तो बाबा क्या कहते थे।
नमः चरी सरा। والا مندر بھی اس سمے کا ہے. یہ مجھے جیت بابا نے کہا تھا جب بابا میں کے سامنے میں یہاں آئی تو بابا نے کہا دل والا مندر میں گئی ہو؟ میں نے کہا جاؤ مجھے دیکھ لو تم وہاں کہاں بیٹھے ہو دل والا. تو تبھی میں دل والا مندر دیکھ ہے. ایسے نہیں جلدی جلدی کرو ابھی تو اونٹ چلتے اونٹ ناماچار سارا سمے کا ہے. دل والا مندر بھی سمے کا ہے. ساری سرشٹی کی آتماؤں کی دل لینے والا باپ دل والا مندر سبھی کے لیے ناماچاری سارا.
تو اس پرکار آپ نے شارٹ میں दिलवाड़ा मंदिर का हमने कुछ अद्भुत रहस्य जाने कि कैसे दिलवाड़ा मंदिर चार वास्तव में मंदिर भी जो है चार युगों का प्रतीक है, सृष्टि चक्र का प्रतीक है. कैसे दिलवाड़ा में कृष्ण के भी यादगार हैं दोनों मंदिरों में. और ये भी हमने देखा कैसे दिलवाड़ा में त्रिमूर्ति का भी यादगार समाया हुआ है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात दिलवाड़ा के सारे रहस्य में देवियों का, मैं तो कहूं दिलवाड़ा को देवियों का मंदिर कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए. और सच में नई दुनिया की स्थापना में नारी शक्ति का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि सबसे ज्यादा वहां पे मूर्तियां जो है नारी शक्ति का ही है. और मंदिर के क्रिएशन से लेकर एंड तक आपने देखा हर जगह नारी की भूमिका बहुत ज्यादा है. तो ये थे दिलवाड़ा के कुछ अद्भुत रहस्य. ओम शांति. अभी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है, मैं सोच रहा था हिस्ट्री का शुरू करूं लेकिन मैं समझता हूं हिस्ट्री से भी बेस्ट टॉपिक है यज्ञ हिस्ट्री की कुछ आदि की कुछ बातें. और आज मैं आपको फिर से हैदराबाद ले जा रहा हूं. हैदराबाद मतलब कहां? पाकिस्तान. पाकिस्तान जाना तो संभव नहीं है. तो मैं आपको आज यज्ञ हिस्ट्री की कुछ पुराने वीडियोस दिखाने वाला हूं और जो वीडियो बहुत ही दुर्लभ है, मिलना बहुत मुश्किल है. और शायद मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार आपके सामने ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. तो अब हम जानेंगे कुछ यज्ञ इतिहास की अनोखी बातें और मुरलियों में आने वाली बाबा की कुछ अद्भुत बातें. तो सभी रेडी हैं? तो आज मैं आपको साक्षात्कार कराऊंगा कराची का, बाबा की पुरानी बिल्डिंग्स जहां हमारे यज्ञ की स्थापना हुई कराची में ले जाऊंगा. क्लिफ्टन में तो मैं अच्छा लास्ट टाइम किसने जो वीडियोस देखी थी यज्ञ हिस्ट्री के ऊपर हमने कुछ लिया था, किन्होंने बहुत कम लोगों ने देखी है. लास्ट टाइम हम आपको कराची के बीच पर ले गए थे, उस बीच पर जहां दादियां तपस्या करती थी. तो चलिए शुरुआत करते हैं. देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे कि यज्ञ में जितनी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का इतिहास है. मैं सारी पुरानी बिल्डिंग्स दिखाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे. तो शुरुआत करते हैं यज्ञ हिस्ट्री की. तो बात है 1936, यहां भले 1937 दिखाया गया है, 1936 में हैदराबाद सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आता था. और 1936 में सबसे बड़ी घटना यह हुई कि सिंध को, हैदराबाद सिंध को बॉम्बे से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया. वहां उसके इलेक्शन होने लगे. आप देखिए गीत गाते हैं तो कहते हैं ना पंजाब सिंध. तो देखिए सिंध एक अलग प्रांत था. तो जो रेड कलर का एरिया देख रहे हैं वही वास्तव में सिंध प्रांत था नक्शे में जो दिखाया गया है. अच्छा, अंग्रेजों के जमाने में राजधानी कहां हुआ करती थी? कलकत्ता. इसलिए बाबा ने अपना सबसे पहले बिजनेस जो है कलकत्ता शुरू किया. बाबा कलकत्ता जाया करते थे. ये मैं आपको वहां के अभी कलकत्ता में आपको ले जा रहा हूं विदाउट एनी टिकट, बिना किसी टिकट के, बिना किसी फ्लाइट टिकट या ट्रेन के टिकट के. तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं कलकत्ता. यहां पे आप देख रहे हैं छोटा सा एरिया, ये ताजमहल नहीं है, इसे विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं. और इसके देखिए इर्द गिर्द कितने अच्छे खूबसूरत तालाब हैं. तो बाबा कलकत्ता में जब रहते थे तो अर्ली मॉर्निंग निर्मल शांता दादी और नारायण दादा दोनों को कार से, भले विक्टोरिया मेमोरियल बताते हैं बाबा के घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे था. और जो परेड ग्राउंड जो है, ये अपने जो ईडन गार्डन जो है आधा किलोमीटर की दूरी पे था और विक्टोरिया मेमोरियल 1 किलोमीटर की दूरी पे था. फिर भी बाबा सबको पैदल यहां पर ले जाते थे अर्ली मॉर्निंग सबको वॉक करने में. अज्ञान काल की बात बता रहा हूं जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी. तो मैं आपको ले जा रहा हूं, कई बताते हैं कि 1900 20 के आसपास देख रहे हैं विक्टोरिया। यहां से एक और चीज आप देखेंगे, एक नदी दिखाई दे रही, कौन सी नदी है? कलकत्ता में कौन सी नदी है? हुगली नदी है। और ये विद्यासागर सेतु है, हावड़ा ब्रिज नहीं है, वो थोड़ी सी दूरी पर है। तो यहां पे एडन गार्डन है, और थोड़ा सा मैं आपको और दृश्य करीब का दिखाता हूं। वहां पे स्टेडियम भी है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होती है। और ये है बहुत ही फेमस, जिसे हम कहते हैं कलकत्ता का एरिया, जिसे कहते हैं न्यू मार्केट, सर स्ट्राउट्स हॉग मार्केट। ये बहुत ही पुरानी मार्केट है, जहां पे बाबा की दुकान हुआ करती थी। चलिए मैं आपको और नजदीक ले जाता हूं। ये हो मार्केट कलकत्ता की, जहां बाबा की दुकान हुआ करती थी। अब मैं आपको उस बिल्डिंग के पास ले जाता हूं जहां बाबा रहते थे। तो आपके सामने है, देखिए पुराने फोटोग्राफ, इस मार्केट न्यू मार्केट के पुराने फोटोग्राफ। और ये रही बाबा की वो बिल्डिंग। इसके फर्स्ट फ्लोर पे बाबा की गद्दी अर्थात दुकान हुआ करती थी यहां पे। सेकंड फ्लोर पे बाबा रहते थे, और थर्ड फ्लोर पे बाबा का पार्टनर सेवक राम वो रहता था, 1, 2 एंड 3। और इस बिल्डिंग का नाम है सुराना मेंशन, लेंसर स्ट्रीट सुराना मेंशन। चलिए मैं बिल्डिंग के और करीब ले जाता हूं आपको। सारी खिड़कियों की बनावट सब कुछ पुराने जमाने जैसे, आज भी ये बिल्डिंग वहां पे खड़ी है। और बाबा ने जो दुकान शुरू की थी उसका नाम क्या था? लकी राज सेवक राम एंड सन्स, पार्टनर के नाम, पार्टनर और उनका दोनों का नाम था लकी राज सेवक राम एंड सन्स के नाम से बाबा ने ये शुरू की थी। और ये किसका फोटो है? दादा आनंद किशोर का। दादा आनंद किशोर और ब्रह्मा बाबा का क्या संबंध था? हाँ, चलिए मैं स्पष्ट करता हूं। ब्रह्मा बाबा तीन भाई थे, सबसे बड़े भाई का नाम तुलसीदास था, दूसरे भाई का नाम नवल राय था, और तीसरे थे लखीराज अर्थात स्वयं ब्रह्मा बाबा। तीन भाई थे। तो जो बड़े भाई थे तुलसीदास, उनका एक बेटा था जिसको हम यज्ञ में भाऊ कहते हैं, या दादा विश्व किशोर कहते हैं। और जो तुलसीदास जो थे उनकी बेटी की शादी दादा आनंद किशोर से हुई थी, तो वो बाबा के क्या हुए? दामाद, क्योंकि भाई की बेटी की शादी हो रही है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? तो जो तुलसीदास जो बड़े भाई थे उनके बेटे का नाम क्या था? विश्व किशोर, जिनको हम यज्ञ में भाऊ कहते हैं। और भाऊ की जो बहन थी उसकी शादी आनंद किशोर से हुई थी, दादा आनंद किशोर से। इसीलिए तो इनका भी बिजनेस था। बाबा के बिजनेस का नाम क्या था? लखी राज सेवक राम एंड सन्स। तो इनका पहले नाम क्या था? लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण एंड कंपनी सन्स ऐसे करके था। इन्होंने भी ऐसे ही किया था जैसे बाबा ने किया था। जब बाबा ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, और छोड़कर बाबा कहां आ गए? हैदराबाद सिंध। तो भाऊ ने भी क्या बताते हैं, आनंद किशोर दादा ने भी क्या किया था, उन्होंने भी अपने पार्टनर राम को छोड़ दिया, और वो भी कहां आ गए? सिंध। ये देखिए डॉक्टर, ये जो है 3-in-1 बुक में आपको इसका विवरण मिलेगा, जो निर्मल शांता दादी की जो किताब है आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, इसमें इसका जिक्र आता है इस किताब में। अच्छा, मैं और भी नजदीक के फोटोग्राफ दिखाता हूं। देखिए ये गद्दी पे बैठे हैं आनंद किशोर, गद्दी पे ही बैठे हैं दादा आनंद किशोर। और क्या लिखा है? राम लक्ष्मण एंड, अभी भी ये दुकान वहां बाटा शोरूम के पास में ही, अभी भी दुकान वैसे की वैसे ही है। दुकान के ऊपर क्या लिखा है? तुलसीदास एंड सन्स। देखिए ऐसे कुछ फोटोग्राफ है जो अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो भाऊ की भी दुकान थी, भाऊ की दुकान नीचे थी, वो रिटेल की शॉप थी। तो भाऊ उनको सारे ज्वेलरी दिखाते थे, और अगर किसी को होलसेल में चाहिए, थोक में चाहिए, तो भाऊ ऊपर ले जाते थे कोठी में, जहां पे बाबा की जो गद्दी थी वहां पे ले जाते थे, वहां पे सारी चीजें फ्रीज होती थी। तो जैसे कि ये भी दुकान बाबा की ही थी। तो कलकत्ता की इन दुकानों का जो है फोटो आपके सामने जो है यहां पे दिखा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं मुरलियों पे। अब जैसे ही जहां बाबा रहते थे उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो एक बहुत ही फेमस गार्डन है जिसका नाम है द ग्रेट, जिसे बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, जगदीश चंद्र बोस के नाम से है। और बाबा मुरलियों में इसको याद करते हैं, याद है? ऐसा पेड़ जिसका जड़ बताते हैं, जिसका ट्रंक हिस्सा जो है मिसिंग है और पूरा पेड़ जो है एरियल रूट्स पे टिका हुआ है। तो चलिए ये मुरलियों में बातें आती हैं। चलिए हमें आपको पेड़ देखना है कैसे दिखता है। ये करीबन 106 एकड़ में फैला हुआ है और ये 250 वर्ष पुराना पेड़ है, 250 वर्ष पुराना। चलिए मैं आपको इसके लाइव वीडियो दिखाता हूं। आज मैं ले चलता हूं आपको कलकत्ता बॉटेनिकल गार्डन में। आप में से बहुतों ने देखा होगा जो कलकत्ता रहते होंगे, जो नहीं रहते उनके लिए पहले वीडियो दिखाएंगे। हाँ, आप देख रहे हैं कहीं पे उसका मेन पार्ट है ही नहीं, मिसिंग है। इस पेड़ के नीचे कितने लोग आ सकते हैं? इस पेड़ के नीचे लगभग 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं, इतनी इसके जो है घेराव है। आप चल चल के थक जाएंगे, इतना विशाल है ये 250 वर्ष पुराना पेड़। बताते हैं कि इसके मेन जो ट्रंक था उसमें बीच में आंधी आई थी तो काफी नुकसान हुआ था, उसमें फंगस लग गया था, उसको काटना पड़ा और ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, सबसे विशाल वट वृक्ष जिसको बाबा मुरलियों में याद करते हैं। तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप भी कलकत्ते पहुंच गए हैं और इस विहंगम दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मुरली में बाबा एक और चीज को याद करते हैं। कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसे कहते हैं सागर द्वीप और जिसको मुरली में बाबा बार बार याद करते हैं। और बाबा कौन से नाम से याद करते हैं मालूम है? गंगा सागर। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, हम नॉर्थ से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग के दिनों में हम नॉर्थ में थे, बाद में मुंबई शिफ्ट हुए, तो हमारी दादी माँ और दादा जो है गंगा सागर स्नान करने गए थे। और तक उस जमाने में एक फिल्म आई थी, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। मैंने शायद पहली बार वो मूवी देखी थी लाइफ में, पहली मूवी। तो अब बताते हैं कि यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन काफी मेला लगता है और कलकत्ता से हावड़ा से लगभग ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक आईलैंड है, द्वीप है, जिसको सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और शास्त्रों में यादगार है, बताते हैं कि बताते हैं कि एक पैर पर तपस्या करने वाले कौन? भागीरथ। उसने यहां पर तपस्या की थी जिसके 60,000 पुत्रों को जो है मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो लोग समझते हैं कि हम भी जब वहां स्नान करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। उनको ये नहीं मालूम कि ये यहां गंगा सागर सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी क्या कर रही है, मिल रही है। वास्तव में गंगा सागर कौन क्या है, ये माउंट आबू का सबसे महान तीर्थ है। तो बाबा जो याद करते हैं ये गंगा सागर का वही स्थान है। आप देख रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिचुअल्स जो है फॉलो करते हैं, गऊ का दान करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो मुरलियों में बाबा इसको याद करते हैं गंगा सागर को, इसलिए हमने ये दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूं कराची। अब बाबा कलकत्ता से कहाँ गए? हैदराबाद। अच्छा, किसको किसको मालूम है कि हैदराबाद और कराची में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? हमारे यज्ञ की शुरुआत कराची में हुई थी कि हैदराबाद में? जो कहते हैं हैदराबाद में हाथ ऊपर करें। कराची, देख कुछ कराची भी कह रहे हैं और जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं वो देखिए। तो कराची समुद्र के किनारे हैं, हैदराबाद सिंधु नदी के किनारे है, दोनों में अंतर है। कराची समुद्र के किनारे है और हैदराबाद सिंध नदी के किनारे है। हैदराबाद से कराची उन दिनों में, उन जमाने में हैदराबाद से कराची ट्रेन जाती थी, दादी प्रकाश मणि बताती थी। और ट्रेन से कितने घंटे लगते थे? 3 घंटे और 2 रुपया टिकट, 2 रुपया टिकट और 3 घंटे अक्सर करके रात को ट्रेन जाया करती थी। तो जब बहुत हंगामे होते थे तो बाबा क्या करते थे, हैदराबाद से ट्रेन पकड़ते थे और कहां चले जाते थे? कराची। कराची में शांतामणि दादी के पिता कौन थे? रिजुमल, उनका बंगला हुआ करता था, तो बाबा वहीं पे चले जाया करते थे। तो हमारे यज्ञ की स्थापना कहां हुई थी? हैदराबाद सिंध में। तो हैदराबाद अलग है, कराची अलग है। हमारा यज्ञ मात्र 2 साल के आसपास तक ही हैदराबाद था, बाकी 12 साल कहां बिताया गया? कराची में। कराची बिल्कुल मुंबई की मरीन ड्राइव की तरह बहुत ही पॉश शहर है। तो आज मैं आपको हैदराबाद भी ले जाऊंगा और कराची भी। तो चलिए चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद नक्शे में आप देख रहे हैं, स्लाइड्स में देखेंगे। आप कहां पहुंच गए? हैदराबाद स्टेशन। चलिए मैं आपको और नजदीक ले जाता हूं। अभी आप हैदराबाद स्टेशन से बाहर उतर रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, और कुछ दूरी पर सिंधु नदी भी है। ये दिखाया गया है कि सिंधु नदी के किनारे सूरज डूब रहा है, शायद लगता है कि आपने रात की ट्रेन पकड़ी होगी। खैर, तो हैदराबाद में अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर आज से लगभग 100 साल पहले हैदराबाद में होते तो मालूम है वहां के घर कैसे दिखाई देते? कुछ ऐसे। और आप बता सकते हैं कि सब हर घर के ऊपर कुछ लगा हुआ है, क्या है घर के ऊपर? ये एंटेना नहीं है, एयरटेल या वोडाफोन का कोई, रिलायंस का एंटेना नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं विंड कैचर और सिंधी में कहते हैं मंग कहते हैं। क्या होता है कि जब वहां हवा बहती है ना, तो ये क्या करता है, हवा को कैच कर लेता है और अंदर के कमरों को बहुत शीतल और ठंडा रखता है। इसको मंग कहते हैं, इसलिए लोग हैदराबाद को कहते थे सिंधी में मंग जो शहरू, सिंधी में ऐसे कहते थे। 1960 के दशक में धीरे धीरे फैशन कम हो गया, लोगों ने ये अपने घर के ऊपर मंग लगाना जो है बंद कर दिया। तो बाबा के जमाने में अगर आप सिंध में होते तो नजारा कुछ ऐसा ही होता। अच्छा खैर, मैं आपको भी अंदर ले जाता हूं। ये 1936 का फोटो है, एक सुनार की दुकान में अगर आपने एंट्री की होती तो आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता। अच्छा, आप कुछ शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, बाबा जहां रहते थे, जिस एरिया में रहते थे, उसका नाम था हीराबाद। वहां बहुत अच्छे अच्छे महलों जैसे जो है बंगलो हुआ करते थे, और वो बंगले आज भी वैसे के वैसे ही हैं। मैं आज उनके वीडियो दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सारे सिंधी लोग वहां छोड़कर कहां आ गए? इंडिया। और इंडिया के सारे मुस्लिम जाके वहां ऑक्यूपाई हो गए। तो इतने अच्छे अच्छे महलों की तरह जो बंगले हुआ करते थे, आज भी हैदराबाद में वैसे ही हैं। इसको कहते हैं नवल राय टावर, या घंटाघर भी कहते हैं, नवल राय टावर कहते हैं। अब जो है हीराबाद एरिया जो है उसका नाम चेंज हो गया है, अब लोग उसको शाही बाजार के नाम से जानते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। और पक्का किला, इसको लोग पक्का किला कहते हैं, हैदराबाद का किला है। तो अगर आप हैदराबाद में होते तो आपको किला भी दिखाई देता। अभी भी ये किला वैसे का वैसे ही है। तो नवल राय टावर और ये रहा पक्का किला और ये कुछ बंगलो। चलिए मैं आपको ले चलता हूं हैदराबाद, और ये आपका साक्षात्कार अभी शुरू हो रहा है। वॉल्यूम्स आप हैदराबाद में हैं, शाही बाजार में आप एंट्री कर रहे हैं। देखिए सारे बंगलोज वैसे के वैसे ही हैं। इसी हीराबाद में बाबा का घर भी हुआ करता था, जिसे लोग जसोदा निवास भी कहते थे। सुनारा लेन। आज भी सारे के सारे मकान वैसे के वैसे ही हैं। शाही बाजार एशिया का बहुत बड़ा बाजार माना जाता है। अब हम फिर से हैदराबाद से मैं अभी आपको और अंदर ले जाता हूं। हैदराबाद में जो सबसे बड़ी फैमिली थी जिसका नाम था मुखी की फैमिली, जो एंटी ओम मंडली की तरफ आ गए थे। मुखी का परिवार बहुत बड़ा परिवार था, बहुत चैरिटी किया करता था। उसका बताते हैं कि ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू दिखाए गए हैं, तो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी मुखी के घर में रुकते थे। मुखी गोविंद राम है, इसके भाई जेठा मंडली जो है बहुत बड़े वहां पे महल जैसे बंगलोज बनाए हैं। तो देखिए मुखी का परिवार है। हम ओम मंडली के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा एंटी ओम मंडली के बारे में भी बताने वाला हूं। यही मुखी गोविंद राम जो बाबा से मिलने के लिए बाद में जब बाबा पार्टीशन के बाद आ गए थे, तो ये मुखी गोविंद राम का फोटो है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं, पहले आपने फोटोग्राफ देखे होंगे। मुखी की फैमिली पहले वहां के घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करती थी, तो वुमेन कॉन्फ्रेंस के बाद, महिला कॉन्फ्रेंस के बाद, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के बाद बताते हैं महिलाएं मुखी के घर में रुकी थी। तो मुखी का बंगलो है सामने आप देख रहे हैं। चलिए मैं आपको मुखी के बंगलो में ले जाता हूं। आप सोच रहे हैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि दादी निर्मल शांता की 1932 में शादी मुखी मंगाराम के परिवार में ही हुई थी। अब तभी उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 15 वर्ष। मैं 1932 की बात कर रहा हूं। तो मुखी फैमिली बहुत रिच थी, आपको उसका अंदाजा इससे मिल जाएगा। अब क्या हुआ है, ये मुखी हाउस एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं मुखी हाउस।
मुखी हाउस की तारीखी अहमियत। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध में हैदराबाद एक कदीम शहर है, जिसे माजी में नेहरून कोर्ट भी कहा जाता था। इस कदीम शहर की कदीम इमारात में मुखी हाउस तामीरात का आला नमूना पेश करती है, जो आज भी काबिल-ए-दीद है। ये इमारत हैदराबाद के इलाका पक्का किला के करीब होम स्टेड हाल के सामने मौजूद है, जिसे अब एक सदी होने को है। इस इमारत को मुखी हाउस या मुखी महल के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये इमारत सन 1920 में उस वक्त की मशहूर शख्सियत जेठानंद मुखी ने अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तामीर करवाया, जिसे उन्होंने मुखी महल का नाम दिया था। देखा जाए तो ये वाकई एक महल से मुशाबा है, और हैदराबाद की काफी कदीम इमारात में से ये एक खूबसूरत इमारत है। इस इमारत का रकबा 833 मुरब्बा गज है। इसके चार दरवाजे हैं। ये घर एक सिंधी हिंदू मुखी खानदान के दो भाइयों गोविंदा राम और जेठानंद की मिल्कियत थी,
जिसकी फोटो आपने थोड़ी देर पहले देखी।
तामीर के 7 बरस बाद जेठानंद मुखी 1927 में इंतकाल कर गए। मुखी हाउस उसके बाद मुखी खानदान के कई अफराद के जेर इस्तेमाल रहा। इस दीदा जेब महल को सन 2009 में हुकूमत सिंध के महकमा आसार कदीमा ने इसको संभालने का फैसला करके इस हसीन महल में म्यूजियम कायम करने का तैयार किया गया। दरअसल सन 2013 में मुखी हाउस खानदान ने अपने कदीम आबाई घर का दौरा किया, और मुखी हाउस को सिंध हुकूमत के हवाले करने के बाद म्यूजियम में तब्दील करने की बाकायदा इजाजत दे दी।
अब आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको ये क्यों दिखाया। तो आपको मालूम है कि हैदराबाद में दो बिल्डिंगें बहुत मशहूर थी और ये हमें नाम याद रखना चाहिए। एक जसोदा निवास, जसोदा निवास में कौन रहता था? ब्रह्मा बाबा। आज भी जसोदा निवास हैदराबाद में है। तो जब मुखी लोग की बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने उन्हें म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है, तो क्यों ना जसोदा निवास को भी क्या होना चाहिए। तो मुझे याद है रमेश भाई ने, बहुत पहले की बात है, रमेश भाई का जब इंटरव्यू दादा नारायण के साथ चल रहा था, आपने देखा भी होगा, तब रमेश भाई ने कहा था कि जैसे हैदराबाद में जो है जसोदा निवास है, तो इंडिया के हैदराबाद में भी बिल्कुल वैसा ही एक मॉडल किसका बनाना चाहिए? जसोदा निवास का। मैं तो कहता हूं ठीक है, अभी तो रमेश भाई जो है अव्यक्त हुए हैं और इसके बाद जो है अभी नारायण दादा भी नहीं रहे, तो मैं समझता हूं कि कम से कम चलिए म्यूजियम ना बने, लेकिन एक कम से कम डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए सर। तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री मैं तो समझता हूं कि इस पे बननी चाहिए। और मैं सोच रहा था कि वे श्रीकांत भाई से बात कर रहा था कि अगर गॉडलीवुड स्टूडियो के थ्रू ये बनाया जाए तो कितना अच्छा। चलिए बाबा पे फिल्म नहीं बन सकती तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट्री तो बनाई जा सकती है। तो हमारे लिए हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं,